हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांश दूसरे कमरे से तैयार होकर बाहर निकला, क्योंकि अंबिका के सवालों के बाद से उसकी हिम्मत नहीं हुई थी दोबारा अपने कमरे में जाकर अंबिका का सामना करने की। वो किसी काम से कहीं जा रहा था कि तभी उसकी माँ उसके रास्ते में आकर खड़ी हो गई। वो काफी गुस्से से वेदांश की तरफ देख रही थी। वेदांश ने एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, क्या है अब आपको, ऐसे रास्ते में आकर क्यों खड़ी हैं आप, जाइए जाकर अपनी बेटी की शोक सभा की तैयारी करिए। वेदांश की माँ ने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वो सब करने की, और वैसे भी अगर करना होगा तो तुमसे परमिशन लेने के लिए नहीं आऊँगी। उनकी आंखों में वेदांश के लिए नफ़रत और गुस्सा दोनों ही साफ नज़र आ रहे थे, और वेदांश ये समझ सकता था, इसीलिए इस वक्त वो अपने चेहरे पर कुछ भी दिखाना नहीं चाहता था। वेदांश ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, हाँ तो फिर क्यों आई हैं यहाँ पर, क्यों खड़ी है मेरा रास्ता रोककर? अगर कुछ बोला है तो बोलिए और हटिए यहाँ से, मुझे और भी काम है। वेदांश की माँ ने कहा, सब पता है मुझे, आजकल क्या ही काम कर रहे हो तुम, मासूम लोगों की ज़िंदगी ख़राब करने का नया काम शुरू किया है, अपनी सगी बहन की जान लेकर अभी तुम्हें सुकून नहीं मिला जो किसी और मासूम लड़की की भी ज़िंदगी को नर्क बनाने पर तुले हुए हो? वेदांश, अगर उसे कुछ भी हो गया ना तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूँगी, ये एक बार भी नहीं सोचूंगी कि तुम मेरे बेके हो, मैंने ही तुम्हें पैदा किया था। वेदांश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो आपको अंबिका के बारे में पता चल ही गया? वेदांश की माँ ने गुस्से में कहा, मुझे शुरू से पता है, जिस तरह से तुम हॉस्पिटल से अपने साथ उसे लेकर आए थे मुझे पता था तुम घर ही लेकर आओगे, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बुआ और उनके बेटे ने जो कुछ भी किया मुझे उसके बारे में भी पता है, ऐसे अचानक से क्यों चले गए वे? देखा तुमने, भले ही प्रतीक को सजा दी हो लेकिन कभी सोचा है तुम जो कुछ भी गलत कर रहे हो उसकी सजा तुम्हें कौन देगा, और क्यों कर रहे हो तुम उसके साथ ये सब? छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, उसके घर, उसके परिवार के पास, तुम उसके कोई नहीं हो। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर वेदांश काफी चौंक कर उनकी तरफ देखने लगा, क्योंकि कुछ देर पहले सुबह अंबिका ने भी उससे यही सारी बातें कही थीं, और अब उसकी माँ भी ये सब कुछ कह रही थी, उनके रिश्ते पर सवाल कर रही थी, और वेदांश के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वेदांश ने उनकी तरफ देख कर कहा, आप सबको रिश्तों की इतनी क्यों पड़ी होती है, और वैसे भी आपने कौन सा अपने सारे रिश्ते बहुत अच्छे से निभाए हैं जो मुझे रिश्तों का ज्ञान दे रही हैं, और चाहे जो भी लगे वो मेरी माँ है, आपको क्या करना है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरे रहते मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, वो ठीक है। वेदांश की माँ ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं, कोई भी किसी की कैद में ठीक कैसे हो सकता है, तुम खुद सोचो वेदांश, क्या वो लड़की ऐसी लाइफ डिजर्व करती है? क्या गलती है उसकी कि वो अपने परिवार से प्यार करती है, अपने भाई का रिश्ता लेकर यहाँ पर आई थी और बाद में उसे ढूंढने के लिए? इसके अलावा क्या कसूर है उसका जो तुम उसे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, और वो भी इतने दिनों से? छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, जिंदगी में कुछ तो अच्छा काम कर लो, एक पल के लिए ही सही, लेकिन अपने अलावा किसी और के बारे में सोच लो। वेदांश ने उनकी तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और कहा, चिल्लाती रहिए आप, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और अब आपकी ऐसी बातें ताने सुनने के लिए कोई नहीं होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद वेदांश की माँ सीधे उसके कमरे तक आई। वेदांश के कमरे के गेट पर नंबर वाला लॉक लगा हुआ था, जिसका नंबर और पासवर्ड क्या था उन्हें भी नहीं पता था। उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन दरवाज़ा उनसे नहीं खुला, तो मायूस होकर वे वापस अपने कमरे में आ गईं। उसी दिन शाम का वक्त, बाहर से काफी ज्यादा खटर पटर और सामान गिरने पड़ने की आवाज सुनकर वेदांश की माँ अपने कमरे से निकलकर बाहर आईं। उन्होंने घर के लिविंग एरिया का बदला हुआ रूप देखा तो हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वहाँ पर काफी सारे लोग थे, घर के नौकरों के अलावा भी काफी सारे नए चेहरे नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर 15-20 लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, और वो लिविंग एरिया इस वक्त किसी बहुत ही खूबसूरत शादी के मंडप की तरह सजा दिया गया था, डेकोरेटिव आइटम्स, फूलों, पर्दों और कलरफुल ब्राइट लाइट्स से। उन्होंने एकदम से बोला, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? किसी ने भी रुककर उनकी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी थे। लेकिन तभी वेदांश उनके सामने आते हुए बोला, एक फैसला लिया है मैंने, पता नहीं आप इस बात से खुश होंगी या फिर दुखी, वैसे तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सोच रहा हूँ आखिर एक लौटी फैमिली मेंबर हैं आप इस घर में, तो बता देता हूँ आपको, आपके इकलौटे बेटे की शादी है, इसीलिए ऐसे सदमे में खड़ी मत रहिए, जाइए और जाकर अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनकर आइए। वेदांश की माँ ने एकदम सदमे से सवाल किया, शादी? तुम्हारी शादी? क्या बकवास कर रहे हो तुम वेदांश? ऐसे अचानक से तुम शादी कैसे कर सकते हो और किससे? अभी सुबह तक तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या शादी जैसे रिश्ते को भी तुमने मजाक समझकर रखा है? वेदांश ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, आपसे तो बात करना ही बेकार है। या तो आपको मेरी बातें बकवास लगती हैं या फिर मजाक, और अगर सच में मजाक लग रहा है ना तो फिर बैठकर हंस लीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर खड़े रहकर आपको यकीन दिलाऊं। मुझे खुद भी तैयार होने जाना है और अपनी होने वाली दुल्हन को भी तैयार करना है, क्योंकि अभी तक तो उसे भी इस बारे में नहीं पता। पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगी, लेकिन जैसा भी हो ये शादी तो आज ही होगी। इतना बोलकर वेदांश सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसकी माँ उसकी बातें सुनकर अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ पर ही खड़ी रह गईं। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी वेदांश ने बोला था और जो कुछ भी वहाँ पर उनकी आंखों के सामने हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रही थीं। वहीं दूसरी तरफ वेदांश अपने कमरे में पहुंचा और उसने देखा कि अंबिका बेड पर ही एकदम साइड में टेक लगाकर कुछ सोच रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी कि दरवाज़ा खुलने पर भी उसका ध्यान उसकी तरफ नहीं गया और वेदांश उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन फिर भी अंबिका ने उसकी तरफ नहीं देखा। वेदांश के हाथ में काफी बड़े से दो शॉपिंग बैग थे और वो शॉपिंग बैग एकदम से उसने अंबिका के सामने रखते हुए कहा, ये कपड़े पहनकर रेडी हो जाओ जितना जल्दी हो सके। वेदांश की आवाज़ कानों में पड़ते ही अंबिका ने उसकी तरफ देखा और फिर अपने सामने रखे हुए उन बड़े से ब्लैक कलर के शॉपिंग बैग को देखा, जो कि नॉर्मल शॉपिंग बैग से कुछ ज्यादा ही बड़े थे। अंबिका को कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने जल्दी जल्दी अपनी पलकें झपकाई और पूछा, क्या है इसमें और किस चीज़ के लिए रेडी? मेरा सच में कपड़े चेंज करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्या हम कहीं जा रहे हैं? वेदांश ने उसके एकदम नज़दीक आते हुए कहा, अरे मन नहीं भी है तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, इसीलिए पहनना तो तुम्हें पड़ेगा ही, और वैसे भी अपनी शादी में ऐसे तो चल नहीं सकती हो। अंबिका एकदम ही उठकर उसके सामने खड़ी हो गई और बोली, क्या अपनी शादी? क्या बोल रहे हो, आज भी पी रखी है क्या तुमने? वेदांश ने उसकी साइड से निकलकर आगे जाते हुए कहा, देखो मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए सीधी तरह से रेडी हो जाओ, आधा घंटा है तुम्हारे पास।
अंबिका को अभी भी उसकी बात का मतलब ठीक तरह से समझ नहीं आया, या फिर शायद वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहती थी। जो भी शादी जैसा शब्द उसके कानों ने सुना था, इसलिए तुरंत ही वो सामने रखे उन शॉपिंग बैग को खोल कर देखने लगी और उसने उसमें से पैकेट निकाला, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शादी का जोड़ा, लाल रंग का लहंगा, उससे मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियाँ, हील्स, बाकी सारा सामान था। और वो सब देखकर अंबिका की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। अंबिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपने आप से कहा, ये सब मुझे क्यों पहना रहा है? क्या ये खुद मुझसे शादी करेगा या फिर मेरी शादी किसी और से करवा रहा है? मैं नहीं पहनूंगी ये सब, मुझे नहीं करनी कोई शादी, ऐसे इसकी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं। टू बी कंटिन्यूड। क्या लगता है आप लोगों को, अंबिका को यकीन होगा इन शादी वाली बात पर? और क्यों लिया वेदांश ने अचानक से ये फैसला? वैसे उसका ये फैसला सही है या गलत? लेकिन अब अगले एपिसोड में शादी हो पाएगी या नहीं, क्या लगता है आप लोगों को? अंबिका इसके लिए तैयार होगी या फिर नहीं, सब कुछ अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसलिए कहानी से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी।